ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं देवीं सरस्वतीं व्यासं मुक्तिदायिनी भद्रेषु
भागवतम दसम स्कंद आठवां अध्याय और श्लोक संख्या है 15।
बहूनि सन्ति नामानि रूपानि च सुपस्थिते। बहूनि सन्ति नामानि रूपानि च सुपस्यते। गुणकर्मानुरूपाणि अन्यहं वेद न जनः। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि से पश्यते गुणकर्मान् रूपाणि तान्यहं वेदिनो जनः।
इस प्रकार है बहुनी विविध संति है नामानी नाम रूपाणी रूप च भी सतस्य पुत्र के ते तुम्हारे गुण कर्म अनुरूपाणी उसके गुणों तथा कर्मों के अनुसार तानी उनको अहम मैं वेद जानता हूँ। नो जनाः सामान्य व्यक्ति नहीं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तुम्हारे इस पुत्र के अपने दिव्य गुणों एवं कर्मों के अनुसार नाना रूप तथा नाम है, ये सब मुझे ज्ञात है किंतु सामान्य लोग ने नहीं जानते। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं बहुनी भगवान के अनेक नाम है। अवदेतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव योगनम से दम संहिता में कहा गया है कि भगवान एक है किंतु उनके रूप तथा नाम अनेक हैं। ऐसा नहीं है कि गर्भमुनि ने बालक का जो नाम कृष्ण रखा वही उनका एकमात्र नाम था, उनके अन्य नाम भी है यथा भक्तवत्सल, गिरधारी, गोविंद तथा गोपाल। यदि हम कृष्ण शब्द की निरुक्ति पर ध्यान दें तो सूचित करता है कि ये वे जन्म तथा मृत्यु के चक्र को रोकने वाले हैं। यहाँ पे निरुक्ति पर ध्यान दें तो नए शब्द सूचित करता है कि वे जन्म तथा मृत्यु के चक्र को रोकने वाले हैं। और कृष का अर्थ है सत्ता अर्थात जगत। कृष्ण संपूर्ण जगत है। कृष का अर्थ आकर्षण तथा नय का अर्थ आनंद भी होता है। कृष्ण को मुकुंद कहते हैं क्योंकि वे हर एक को आध्यात्मिक नित्य तथा आनंदपूर्ण जीवन प्रदान करने वाले हैं। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जीव को जो थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली है उससे वह कृष्ण के कार्यक्रम को ध्वस्त करना चाहता है। यही भौतिक रोग है। इतने पर भी कृष्ण सारे जीवों को दिव्य आनंद प्रदान करने के लिए इच्छुक रहते हैं। फलतः वे विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। इसीलिए वे कृष्ण कहलाते हैं। क्योंकि गर्गमुनि ज्योतिष आचार्य है अतएव वे वह सब जानते थे जो अन्य लोग नहीं जानते थे। फिर भी कृष्ण के इतने नाम है कि गर्गमुनि भी उन सबको नहीं जानते थे। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के अनुसार उनके अनेक नाम तथा रूप है। तो प्रसंग के अनुसार यहाँ पर वसुदेव जी ने गर्ग ऋषि को जग में भेजा गुप्त रीति से ताकि कंस को यह मालूम न चले, क्योंकि कंस को यह पता था कि जो यादव वंश है उसके जो पुरोहित है वो गर्गाचार्य है। तो इसलिए अगर गर्गाचार्य जी खुले रूप में अगर ब्रज में जाकर नामकरण करेंगे तो कंस को शंका होगी कि ये जरूर वसुदेव का पुत्र है। इसलिए उन्होंने गुप्त रीति से उनको भेजा। और जब वो नंद के यहाँ आए तो नंद महाराज ने उनका स्वागत किया और वहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया कि उनकी संगति का लाभ उठाने के लिए उन्होंने अपनी गौशाला में नंद महाराज ने अपनी गौशाला में उनका गुप्त रीति से नामकरण करने के लिए उनसे अनुरोध किया। तो वहां पर जो गर्ग ऋषि है वो बलराम जी का नामकरण करते हैं और उसके बाद भगवान कृष्ण का नामकरण करते हैं। तो कृष्ण शब्द की जो निरुक्ति है प्रभुपाद जी ने यहाँ पे दी है कि नय का अर्थ है जो जन्म मृत्यु के चक्र को रोक दे और कृष्ण शब्द का अर्थ है जो जगत का कारण है और नय शब्द आनंद का सूचक है। इसी प्रकार से गर्ग संहिता में गर्ग जी इसकी निरुक्ति बड़े विस्तार के साथ करते हैं। वहां पे बताते के शब्द मतलब के का अर्थ है कमलाकान और री का अर्थ है राम और से का अर्थ है षडैश्वर्य पूर्ण और ने का अर्थ है नरसिंह भगवान और एकार का अर्थ है जो अग्नि भूख यानी अग्नि के द्वारा जो यज्ञ को भोगते हैं और हलाकार जो दो बिंदु लास्ट में आते कृष्ण तो उसको नर और नारायण का सूचक बताते हैं। तो इस प्रकार से ये कृष्ण शब्द की निरुक्ति गर्ग संहिता में बताई गई है। तो इसीलिए उनको पूर्ण पुरुषोत्तम बताया गया है। ऐसे गर्ग संहिता में और अन्य शास्त्रों में अवतारों के 6 प्रकार के वर्णन बताए गए हैं, जिनमें से अंश, अनुशान, कला, पूर्ण और परिपूर्ण और सत्यावेश। इस प्रकार से ये 6 अवतारों का वर्णन गर्ग जी करते हैं। तो अंश तो जो ये सृष्टि के लिए 3 रूप धारण करते हैं वो उनके अंश है, जैसे महाविष्णु, कारणोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु, ये भगवान के अंश हैं। और ये ब्रह्मा और सिद्धि उनके अंश हैं जो गुणों को धारण करते हैं। और जो ब्रह्मा जी के पुत्र है उनको अंशांश बताते हैं, जैसे मरीचि है, कश्यप है, अंगिरा इत्यादि जो पुत्र, ये अंशांश है। और भगवान की जो कला है, रामादिश मूर्तिषु कला नियमन तिष्ठन, ये भगवान के नाना अवतार उनकी कला है। और भगवान राम को पूर्ण अवतार बताते हैं, लेकिन कृष्ण को परिपूर्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम बताते हैं, क्योंकि गोलोक खंड में वहां पर गर्ग संहिता में बताया है कि जब ही राम वहां पे जाते तो वो शंकर सेन में विलीन हो जाते हैं, क्योंकि वो उनकी उत्पत्ति के कारण है। और जब ये शंकर सेन जब गोलोक में जाते हैं तो कृष्ण के शरीर में लय हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो जब भगवान कृष्ण स्वयं इस धराधाम पे आते हैं तो उनके साथ सारे अवतार भी उनके साथ रहते हैं, इसीलिए उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बताते हैं। तो ये निरुक्ति के अनुसार भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम घोषित किया गया गर्ग जी के द्वारा। और इसके पहले भी श्लोकों में उन्होंने भगवान के अन्य अन्य प्रकारांतर से उन्होंने बताया कि ये जो है किसी युग में रक्त, पीत, शुक्ल, इस प्रकार से अलग अलग रंगों में ये रूप धारण करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग रूप और नाम के विषय में भगवान का बताया गया, बहुनी नामानी रूपाणि। तो गर्गाचार्य जी जो है ब्रह्मा जी के पुत्र है, तो वो एक प्रकार से अनुशांत है और सृष्टि के प्रारंभ से ही वो है। तो भगवान के अनेकानेक जो अवतारों को उन्होंने दर्शन किया है, उनके नामों को जानते हैं, और इन्होंने जो है स्वयं गर्गाचार्य जी ने जो ज्योतिष शास्त्र है उसकी रचना की है। तो पहले के जो ब्राह्मण थे वो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल उनकी दृष्टि में रहते थे, इसीलिए पहले से ही वो इस प्रकार से किसी के भी भविष्य को बता सकते थे। अभी भी कुछ ब्राह्मण है, विशेष करके वैदिक काल में जब किसी का नामकरण किया जाता था तो पहले से ही जो है उसके जो ग्रह नक्षत्रों के अनुसार उनकी राशि और ये सब देख करके उसके नामकरण को उसके कर्म और गुण के आधार पर उसका नाम दिया जाता था। जैसे हम लोग कमल लोचन प्रभु बता रहे थे, ये धृतराष्ट्र के पुत्रों के सबके नाम द से शुरू होते, यानी कि वो सब दुष्ट बुद्धि के थे, तो उनके कर्म भी ऐसे ही थे। तो कर्म और गुण के अनुसार उनके नाम होते थे। जैसे धृतराष्ट्र का नाम हम देखे, धृत का मतलब जो धर के यानी पकड़ के रखता है, राष्ट्र मतलब राज्य को, जिसने राज्य को हमेशा पकड़ के रखने के लिए कोशिश की, तो उसके गुण और कर्म के अनुसार ही उनका नाम था। इसी प्रकार से यहाँ पे गर्गाचार्य जी बता रहे हैं कि कृष्ण के जो बहुत से नाम और रूप है ये किसके अनुसार है, गुण कर्माणि अनुरूपाणि, उनके जो गुण और कर्म है उनके अनुरूप ही उनके नाम है। और ये गुण और कर्म ऐसे भगवान के ऊपर ये सब लागू नहीं होता, क्योंकि वो भक्त वत्सल है। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी पहले ही जो नामों की व्याख्या कर रहे हैं वहां पे भगवान को भक्त वत्सल बता रहे हैं, यानी कि वो भक्तों के भाव के अनुसार नाम और रूप को ग्रहण करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज के लिए उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया था, ऐसे तो भगवान जब भी अवतार लेते तो सामान्यतः माता पिता के द्वारा वो अवतार ग्रहण करते हैं, लेकिन जब अपने भक्त ने ये जो है वचन दे दिया था, सुखदेव गोस्वामी वहां पे एक श्लोक बताते हैं कि वहां पे बताते कि सत्यम विधातुम निज भक्त भाषितम। जब उनके भक्त ने ये वचन दे दिया था कि ये खंभे में जो है भगवान है, तो भगवान को उसी रूप में वहां से प्रकट होना पड़ा। सत्यम विधातुम निज भक्त भाषितम, क्योंकि उनके भक्त ने ये वचन दिया था कि इस खंभे में भगवान है, तो उसी वचन को सत्य करने के लिए निज भक्त भाषितम, उनके भक्त ने ये भाषण कर दिया था कि हाँ इसमें है भगवान, तो उसी को सत्य करने के लिए वो खंभे से प्रकट हो गए। तो ये भक्त के भाव के अनुसार भगवान ने वो नरसिंह रूप धारण किया था। कभी भी हम लोग ऐसा नहीं देखेंगे कि किसी मनुष्य के सिर पर सिंह का जो है मुख है, सिर है। तो ये भक्त के भाव के अनुसार, हालांकि ये सारे रूप प्रभुपाद जी बताते वैकुंठ लोक में अपने अपने लोक में है, लेकिन जब इस भौतिक जगत में वो आते हैं तो किसी भक्त के भाव के अनुसार वो इस प्रकार से लीला और नाम को ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं इसी लीला में, कृष्ण लीला में, जब भगवान जो है भगवान को ये कंस वहां पे मथुरा के लिए बुलाते हैं, तो उनकी जब वो रंगशाला में जाते हैं वहां पे युद्ध के लिए, तो भगवान कृष्ण को वहां पे जब अखाड़े में सभी तरह के भक्त रहते हैं कंस के, वहां पे ये ब्रजवासी गोप गोपी वगैरह और वहां पे जो है मल्ल वगैरह रहते हैं और ऋषि मुनि रहते हैं, मथुरावासी रहते हैं, तो वहां पे वर्णन करते सुखदेव गोस्वामी कि जैसा जिसका भाव था उसी के रूप में भगवान का दर्शन कर रहे थे वो। जैसे गोपियों का, किन्नी किन्नी गोपी गोपियों का जो है उनके प्रति वात्सल्य भाव था, तो उनको अपने पुत्र के रूप में दर्शन हो रहा था, शिशु के रूप में। और जो मल्ल वगैरह थे जो उनसे युद्ध करने वाले थे, उनको साक्षात काल के रूप में उनका दर्शन हो रहा था। हालांकि भगवान एक ही थे, लेकिन भाव के अनुसार वो इस प्रकार से दर्शन दे रहे। यहां पे बता रहे गुणे कर्माणी बहुनी रूपाणी नामानी रूपाणी। तो व्यक्ति के भाव के अनुसार भगवान इस प्रकार से रूप और नाम को ग्रहण करते हैं। और जो कांता भाव की वहां पे गोपियां थी, उनको साक्षात कामदेव के रूप में दर्शन हो रहा था। जो लोग उनके सखा वगैरह थे, उनको अपने मित्र के रूप में दर्शन दे रहे थे। और कंस इत्यादि को साक्षात मृत्यु के रूप में वो दर्शन दे रहे थे। हालांकि भगवान एक ही थे, यहां पे प्रभुपाद जी बता रहे अवदेतम अच्युतम, वो अवदेत मतलब दो नहीं है, एक ही है, लेकिन अनादि अनंत रूपम। इस प्रकार से भक्त के भाव को वो इस प्रकार से जो है अनंत रूप दिखलाते हैं। जैसा जो ये यथाम प्रपद बनते तांस थे भजन में हम, जिसका जैसा भावना रहता है उसी के अनुसार उसको दर्शन देते हैं। जैसे राधा गोविंद महाराज एक बता रहे थे कथा में कि तुलसीदास जी थे, वो भगवान राम के भक्त थे, भगवान राम के भक्त थे वो, और उनके एक गुरु भाई या भाई थे, उनका नाम था नंददास। तो ये उनसे पूछ रहे थे, इन्होंने एक दोहा लिखा कि काहे छोड़े रघुनाथ को धनुष ले बाण ले हाथ, मतलब रघुनाथ जी को आपने क्यों छोड़ा है जिन्होंने धनुष बाण अपने हाथों में ले रखा है। तो इनका पूछने का आशय था कि आप तो हमारे गुरु भाई है और यहाँ चित्रकूट और अयोध्या के पास में रहते हैं, भगवान राम के भक्त है, तो आपने कृष्ण को क्यों पकड़ा। तो इन्होंने ये इस प्रकार से एक लाइन लिख के भेजी, कहा छोटे राम को धनुष बाण लिए हाथ। तो फिर दूसरी लाइन को ये नंददास जी ने पूरा किया और उन्होंने लिखा कि उसमें बताया है कि मतलब मुझे मुरली की तान को इतना वैराग्य आ गया, मुरली की तान सुन के सुन मुरली की तान को, ऐसे कुछ उन्होंने दोहे में लिखा, मतलब उन्होंने पूरा किया। तो देखिए वहां पे तुलसीदास जी का भाव क्या है कि भगवान जो है धनुष बाण लेके रहे हाथ में, और ये नंददास जी उनके गुरु भाई सुन मुरली की तान के, मतलब इतना मुझे वैराग्य हो गया जीवन से कि कृष्ण के प्रति मैं आसक्त हो गया। तो भगवान एक ही है, अद्वैतम वो एक ही है, लेकिन भक्त के भाव के अनुसार वो अलग अलग रूप को धारण करते हैं। यहाँ पे बहुनी रूपाणी शब्द बता रहे हैं, इससे जो है ध्वनित हो रहा है कि गर्ग ऋषि बता रहे कि जिस तरह के भक्त यहाँ पे जिस जिस भाव को जो है लेकर के भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान उसी अनुसार रूप और नाम को ग्रहण करेंगे। हालांकि गर्गाचार्य जी भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानते हैं, उन्होंने जो है भूत में जो हो चुका है उसको भी देखा होगा, वर्तमान में भी, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र है, तो उन्होंने असंख्य अवतारों को देखा होगा, भगवान के असंख्य नामों को भी जानते हैं। लेकिन भगवान तो जो है अनंत रूप धारण करने वाले, कितने नामों को वो गिना सकते हैं। ऐसा वर्णन है भागवतम में, अन्य शास्त्र में, कि भगवान के स्वयं के जो है अंश शेष जी, उनके अनंत मुख है, और जब से भगवान के गुणों को वो अपने अनंत जो है गुणों से हमेशा गुणगान करते रहते हैं, लेकिन एक भी गुण को वो शेष नहीं कर पाए। फिर गर्ग जी के विषय में क्या कहा जा सकता है, इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ पे लास्ट में तात्पर्य में कि गर्ग जी भी उनके पूरे पूरे नाम और रूपों को नहीं बता सकते, इसीलिए उन्होंने क्या शब्द लिखा, बहुनी। नहीं तो गर्ग संहिता में उन्होंने कृष्ण के 1008 नामों का वर्णन किया है, तो वहां पे वो लिख सकते थे इनके 1008 नाम है, लेकिन बता रहे बहुनी रूपाणी, नाम और रूप बहुत है, गिने नहीं जा सकते वो। और कैसे, गुणे कर्मण, गुण और कर्मों के अनुसार, जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि ये जो सृष्टि में समाज का विभाजन मैंने कैसे किया, गुण और कर्म के अनुसार, गुणे कर्माणि चातुर्य वर्णम मया कृष्णम गुण कर्म विभाग पर। तो गुण और कर्म के अनुसार जो है उन्होंने, व्यक्ति के गुण क्या है, कर्म के अनुसार उन्होंने ये समाज का जो है विभाजन किया है। अगर कोई सतोगुण में जिसकी बुद्धि है तो ब्राह्मण के स्तर पर, कोई रजोगुण और सत्व और इसके मिश्रण से है तो क्षत्रिय, रजो और तमो और थोड़ा सत्व का मिश्रण है तो वैश्य है, और जिसमें तमो की प्रधानता वो शूद्र है। तो इस प्रकार से जो भी संसार में नाम और रूप होते हैं वो गुणों के आधार पर होते हैं। हालांकि ये जो वर्णन है वो भौतिक गुणों का वर्णन, भगवान के जो गुण और नाम रूप है वो दिव्य है, लेकिन यहाँ पे गुण और कर्म के अनुसार जो विभाजन है उसके विषय में यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे भौतिक संसार में भी आजकल नाम दिए जाते हैं तो उसके कर्म कुछ अलग होते हैं, रूप कुछ अलग, लेकिन नाम कुछ भी दे दिया जाता है, किसी का बंटी, किसी का पिट, बट और कुछ अलग अलग नाम, मतलब जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो ऐसे भगवान के नाम और रूप नहीं है, उनके नाम के और रूप कहते हैं गुणे कर्माणु अनुरूपाणु, गुण और कर्म के अनुरूप ऐसे नाम है। तो जिस प्रकार का जो भक्त भाव लेकर के भगवान को उनको देख दर्शन करना चाहते, इसी जो है अवतार में भगवान ने असंख्य नाम धारण किए हैं, जो भक्त जिस प्रकार से उनको भजना चाहते उसी रूप में वो उनको दर्शन देते और उसी प्रकार का नाम होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं भगवान ने क्या नाम धारण किया है, गिरधारी, ये किसने नाम दिया, उनके भक्तों ने दिया। वो क्यों आए यहाँ पे? आप लोग की सेवा को ग्रहण करने के लिए। ये एक अर्था अवतार है, भगवान के पांच प्रकार के अवतारों में से ये एक अर्था अवतार है, तो ये साक्षात भगवान है। तो आप लोगों को भाव को ग्रहण करने के लिए ये यहाँ पे राधा गिरधारी के रूप में, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में इस प्रकार से यहाँ पे उपस्थित है। तो अलग अलग अपने भक्तों के भाव के अनुसार वो नाम को ग्रहण करते हैं। जब ही प्रभुपाद जी ने लंदन में जो है स्थापना की, तो वहां पे नाम क्या दिया? राधा लंडनेश्वर। तो वहां के भक्तों की जो भावना थी उसके अनुरूप उन्होंने ऐसा नाम ग्रहण किया और ऐसा ही रूप। पेरिस में जो है वहां पर राधा पेरिश्वर। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह पे जैसे भी भक्तों ने जो जो उनको नाम दिया उसको उन्होंने ग्रहण किया और वैसे ही रूप को वो धारण करते हैं। तो यहाँ पे गर्गाचार्य जी जो बता रहे बहुनी रूपाणी, इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार से जो भक्त जिस भाव को लेके उनको दर्शन करना चाहते हैं, उनकी भक्ति करना चाहते हैं, वहां पे भागवतम में ये नारद जी युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि कैसे जो है अलग अलग, वो भक्त भी नहीं थे, अभक्त थे, किस प्रकार से उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, क्योंकि उनका भाव ऐसा था। तो बताते कंस ने भय के कारण भगवान को प्राप्त किया, शिशुपाल और दंत बकरी ने कैसे द्वेष के कारण भगवान को प्राप्त किया, गोपियों ने कैसे हालांकि वो भौतिक काम नहीं है लेकिन कामना वश उनको प्राप्त किया कांता के रूप में, और जो बात्सल भाव के भक्त थे उन्होंने उनको अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया। तो नारद जी युधिष्ठिर महाराज को ये सब बता रहे हैं। वहां पर युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते कि ये शिशुपाल है, दंत वक्र है, इन्होंने क्या ऐसा किया था कि भगवान ने, मतलब उन्होंने भी मुक्ति को प्राप्त कर लिया, इतना द्वेष करते थे। राधा गोविंद महाराज बताते कि शिशुपाल जब भी तोतली बोली बोलता था तभी से उनको कृष्ण को गाली देना शुरू किया था और अंत तक उसने गाली दी थी, लेकिन फिर भी वो भगवान को कैसे प्राप्त कर गया। तो भगवान का जैसा भाव व्यक्ति के प्रति रहता है उसी के अनुरूप वो रूप धारण करते हैं। तो द्वेष के भाव में उन्होंने जो है भगवान का भजन किया था, तो भगवान ने उसी रूप में उसको मृत्यु के रूप में आए और उसको मुक्ति दे दी। हालांकि भगवान भक्त वत्सल है लेकिन हमारे भाव को ग्रहण करते हो, उन्होंने द्वेष भाव में भजन किया था तो द्वेष को भी स्वीकार कर लिया। कंस ने भय के कारण जो है भगवान को मारने की वो की थी, तो काल के रूप में आके उसको इस प्रकार से मुक्त किया। तो जाकी रही भावना जैसी, उसी मूरत को भगवान दिखाते हैं। तो इसीलिए बहुनी रूपाणी शब्द जो बता रहे वो इसी के अनुसार है। यहाँ पे प्रभुपाद जी जो भक्त वत्सल और भी भगवान के बहुत से नाम बता रहे, गोविंद, गोविंद नाम क्यों पड़ा भगवान का? भगवान ने जब ही गोवर्धन पर्वत उठाया ब्रजवासियों की रक्षा के लिए, तो इंद्र बड़ा ही जो है उसको भय हुआ कि ये तो साक्षात भगवान है और इनसे मैंने इस प्रकार से भक्तों को इस प्रकार से कष्ट दिया है। तो भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए वो सुरभि गाय और ये आकाश गंगा का जल लाकर भगवान का उन्होंने अभिषेक किया था। जब भी हम लोग गोवर्धन परिक्रमा करते आज भी, तो वहां पे एक है गोविंद कुंड, वहां पे भगवान का अभिषेक किया था, तभी से उनका नाम क्या दिया? गोविंद। तो भगवान जो है गोविंद नाम से प्रसिद्ध हुए, जो गायों को, पृथ्वी को और इंद्रियों को जो आनंद है वो गोविंद है, भक्त वत्सल है, गोविंद है, गोपाल है, गौओं का पालन करते इसलिए गोपाल है। गोवर्धन को उठाया इसलिए गिरधारी है। तो भगवान के अनंत नाम है, जो सबको आनंद प्रदान करते वो राम है, तो असंख्य नाम है उनके, बहुनी नामानी रूपानी, जिनको कोई गिन नहीं सकता। हालांकि गर्ग संहिता में भगवान के 1000 नाम गर्ग जी ने वर्णन किए, 1000 नाम है उनके, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो बता रहे कि बहुनी रूपानी नामानी, बहुत से रूप और नाम है जिनको कोई गिन नहीं सकता, और उसी के अनुसार वो गुण और कर्म को प्रकट करते हैं। क्योंकि भगवान के गुण इतने बताते हैं कि कोई भी उनको शेष नहीं कर सकता। भगवान जब भी कोई स्वयं भगवान भी अपने गुणों को नहीं बताते। प्रभुपाद जी एक ये भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि जैसे ही भगवान उसको जानना चाहते थे और कोई गुण उनका प्रकट हो जाता है, तो पूरा पूरा भगवान भी अपने गुणों को नहीं जानते। ऐसे तो रूप गोस्वामी पाद जी भगवान के 60 गुणों का वर्णन करते हैं, कृष्ण के 64 गुणों का, लेकिन फिर भी यहाँ पर जिन नाम और रूपों का वर्णन किया जा रहा है गर्ग जी के द्वारा, वो कैसे हैं? भक्त के भाव के अनुसार वो ग्रहण करते हैं, तो इसलिए उनके नाम और रूपों को कोई गिन नहीं सकता। इसीलिए बहुनी रूपानी नामानी। लेकिन महाप्रभु बताते हैं कि हम लोग का दुर्भाग्य यह है कि दुर्देव मिद्रित निहा जन्म राग। हालांकि भगवान ने कृपा करके भक्तवत्सल रूप में अनेक अनेक नाम दिए हैं, कृष्ण गोविंद जैसे उनके लाखों करोड़ों हजारों नाम है, लेकिन फिर भी उनमें हमारा अनुराग नहीं हो रहा है। ये महाप्रभु हम लोग के लिए बता रहे हैं, ये हम लोग का क्या है? दुर्भाग्य। ये जो नाम है ये सीधा महाप्रभु कहां से लाए? गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये महाप्रभु जी ये नाम को लेके आए थे, विशेष करके ये महामंत्र हम लोग के लिए लेके आए, फिर भी हमारा दुर्देव ऐसा है कि हम लोग इसमें अनुराग नहीं हो रहा। कैसे भी करके हम लोग 16 माला करके उससे मुक्त होना चाहते हैं। जैसे ही किसी का 16 माला हो जाता है तो वो प्रसन्न हो जाता है कि अभी मेरा पीछा छूट गया आज का। तो जब तक हम लोग का ये भाव रहेगा तब तक तो कभी इसमें अनुराग नहीं होने वाला। जिसमें हमारा अनुराग होता है उसको क्या करते हैं हम? जैसे धन में हमारा बहुत आसक्ति रहता है तो क्या करते हैं? बहुत संभाल के रखना चाहते हैं और उसको बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यहां पे क्या करते हैं? जैसे ही गिनती पूरी हो गई कि साइड में हटा देना चाहते हैं, मतलब उसका तिरस्कार करना चाहते हैं। मैंने 16 माला खत्म कर दिया, खत्म मतलब भगवान के नाम को मार देना चाहते हैं हम लोग। तो जब तक ये भाव रहेगा तब तक कभी भी अनुराग नहीं होगा, और जब तक अनुराग नहीं होगा तब तक क्या होगा? भगवान की कृपा को नहीं प्राप्त कर सकते। तो यहाँ पे गर्ग जी के द्वारा ये नामों का वर्णन, हालांकि भगवान के नाम कोई दे नहीं सकता, क्योंकि भगवान जैसे अजन्मा है तो भगवान अभिन्न होने के कारण भगवान का नाम भी हमेशा स्वयं भू है, वो स्वयं सिद्ध नाम है, लेकिन जब वो भक्तों के भाव के अनुसार यहाँ पे प्रकट होते तो एक नाम को ग्रहण करते हैं। हालांकि उनका मूल नाम कृष्ण है, जैसे कृष्ण नाम गर्ग जी ने दिया था, फिर भी ये कृष्ण महामंत्र को कौन लाए? स्वयं कृष्ण महाप्रभु के रूप में लेके आए। इसीलिए बताते गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, पहले भी था ये, लेकिन महाप्रभु स्वयं लेके आए। तो उनके भक्तों के द्वारा यहाँ पे इसलिए प्रकट किया जाता है नाम और रूप को कि ये बद्ध जीव इसका जो है लाभ उठा करके अपने जीवन को सार्थक करे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी इसी नाम को कहाँ लेके गए? पूरे विश्व में उन्होंने प्रचार किया। जैसे यहाँ पे गर्ग जी आके नाम दे रहे हैं, हालांकि भगवान का नाम हमेशा रहता है, ऐसा नहीं कि जब भी 5000 साल पहले गर्ग जी ने आके नामकरण किया तभी से भगवान का नाम कृष्ण, वो नाम स्वयं भू है। जैसे भगवान अभिन्न, उनका नाम भी उनसे अभिन्न है। नाम नामकारी भवदा मृत सर्वशक्ति, तो नाम कोई भगवान को दे नहीं सकता। उनका नाम स्वयं उनके गुण और रूप के अनुसार सिद्ध है, लेकिन जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार के वो नाम को प्रकट करते हैं। जैसे भगवान प्रकट होते हैं, जैसे दिन में क्या होता है, सुबह के टाइम सूर्य प्रकट होता है, वो जन्म नहीं लेता, इसी प्रकार से उनके भक्तों के द्वारा ये प्रकट किया जाता है। तो हम लोगों के उद्धार के लिए गर्ग जी यहाँ पे नामकरण कर रहे हैं कि ये नामों को लेकर हम लोग अपना जीवन सार्थक करें। तो गिरधारी यहाँ पे प्रकट हुए हैं हमारे भाव और भक्ति को ग्रहण करने के लिए। अभी वो देख रहे होंगे कि किसका क्या भाव है, उसके अनुसार उसको कृपा देंगे वो। तो यहाँ पे हम लोग विराम करते हैं, किसी को कोई टीका टिप्पणी या प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। क्या उसके लिए हमारे व्यवहार को ठीक करना पड़ेगा। भक्तों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है उसके अनुसार उनकी कृपा या द्वेष के भाजन बनते हैं हम लोग, कोई भी व्यक्ति हो। अगर हमारा व्यवहार ऐसा होगा तो इसी प्रकार का जो है हमको वो मिलेगा, क्योंकि सभी भक्त लोग यहाँ पे भक्ति करने आए, कोई द्वेष करने नहीं आया। तो हमारा भाव जैसा रहेगा उसके अनुसार हमें कृपा या द्वेष के भाजन बनेंगे हम। अभी इसीलिए हमको हरि गुरु वैष्णव के शरणागत होने की शिक्षा दी जाती है कि वैष्णव लोग जैसे प्रसन्न हो उसी प्रकार का व्यवहार हमारा होना चाहिए। जब तक कोई भक्त हरि गुरु और वैष्णव ये तीन के शरणागत नहीं होता और मनमाना अगर कुछ करता रहेगा तब तक वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि सब तक सब कुछ जो है गुरु और वैष्णव की कृपा से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हमारे ऊपर हम लोग कृपा लेना चाहते हैं कि नहीं, अगर ऐसा व्यवहार होगा तो फिर अवश्य मिलेगा। और कुछ ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की श्रील प्रभुपाद की जय।